हाँ साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइलवाणी से जिला सम्यक दिनकर पाठक कर आज हम विश्व जनसंख्या दिवस पर एक विशेष चर्चा के तहत आपको रूबरू कराने जा रहे सांख्यिकी विभाग में पूर्व में कार्यरत रह चुके एवं वर्तमान में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरिजीत देशमुख एवं साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी है कला शिक्षक महासंघ की अध्यक्ष मुंबई से श्रीमती भारती जाधव जी। नमस्कार सर जी।
नमस्कार
नमस्कार।
आज इस चर्चा को प्रारंभ करने के लिए मैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर आमंत्रित करता हूँ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरीश जी देशमुख जी को कि वे इस चर्चा को विधिवत प्रारंभ करें।
धन्यवाद धन्यवाद। आज जैसा कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, अत्यंत तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना इसका लक्ष्य है। देखिए आज हमारे साथ में जुड़े हैं भारती जाधव जो मुंबई से हैं, जो कि ज्ञान संपदा हाई स्कूल शिवाजी नगर गोवंडी मुंबई में शिक्षिका के रूप में हैं, और वैसी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति मुंबई उपनगर की वो महिला संगठिका भी है। हालांकि वो बहुत एक्टिव महिला है और कोरोना के समय उन्होंने काफी काम किया है और उनका इंटरेस्ट के कारण उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को भी काफी सहायता की है। और जैसे कि बताया गया है कि कला शिक्षक महासंघ मुंबई की वे अध्यक्ष हैं, मैं उनसे आपसे सब रूबरू करूंगा। तो भारती मैडम जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि जनसंख्या दिन क्यों मनाया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है, ये हमारे श्रोताओं को बताएं कि कष्ट करें।
जी जी हरीश जी, जनसंख्या दिन आपने जैसे बताया कि वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा भारत देश जो है वो जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है, और इतनी भारी लोकसंख्या होने के कारण इस लोकसंख्या से जो जुड़ी समस्या होती है उसके बारे में लोगों में चेतना जागृत करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य इसका यह है कि परिवार नियोजन का महत्व, लैंगिक समानता, दारिद्रता, माता का आरोग्य, मानसिकता और अन्य जनसंख्या के बहुत सारे प्रश्न, इन सभी पर जन जागरण करना, यह उसका एक दूसरा मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से इसकी जानकारी है हरीश जी।
बढ़िया बढ़िया, ये सही बात है कि जनसंख्या दिवस के ऊपर आपने बताया कि किस प्रकार से इसका उद्देश्य है। अभी हम आगे बात करेंगे जनसंख्या यानी लोकसंख्या दिवस जो मनाया जाता है, इसकी वृद्धि होने का कारण क्या है, ये भी हमारे श्रोताओं को समझाइए।
जी हाँ जी, देखिए पहले जब जन्म दर और मृत्यु दर था वो दोनों भी समान होते थे, तभी लोकसंख्या की लोकसंख्या की वृद्धि नहीं होती थी। लेकिन आज क्या हुआ है कि विज्ञान के प्रगति से मृत्यु दर बहुत कम हो गया है और जन्म दर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो वैसे की वैसे ही है। और इसके कारण एक तो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ में लोग जो है वो आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, भौतिक सुविधाओं का बहुत सारा अमल कर रहे हैं, खुद के जीवन शैली में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन अपने खुद की सोच में वो बदलाव नहीं लाते हैं। लैंगिक असमानता पर वो अड़े रहते हैं, लड़का लड़की में भेदभाव, यह तो बहुत ही मुख्य कारण है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन जो सोच है वो हमारी बहुत पुरानी है, अंधविश्वासों में डूबी हुई है। आज जब विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसके जो शिक्षक गणों के द्वारा समाज हित के बारे में जिस कोई भी चीज में बदलाव लाना जरूरी है, ऐसी बातें जिन्हें वो रोकना चाहिए, इन सभी चीजों का प्रचार और प्रसार इनके माध्यम से बच्चों तक पहुंचने की उन पर जवाबदारी होती है और वो पहुंचाते भी है। लेकिन यहाँ पे एक मुझे खेद व्यक्त करना मैं चाहती हूँ कि शिक्षकों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रित होने की बातें किताबों के माध्यम से बताई जाती है, लेकिन आज भी उन्हीं शिक्षकों की सोच ऐसी है कि उन्हें पहले दो लड़कियां हैं, फिर भी लड़के के लिए उन्होंने तीसरा चांस लिया है, वो आगे जाते हैं। इन्हीं के विचारों में वृद्धि नहीं है तो वो भावी पीढ़ी के सामने क्या आदर्श रखेंगे, है ना। कई शिक्षक इसके अपवाद भी है, यह भी बात पे यह नमूद करती हूँ, लेकिन इसका प्रमाण जो है वो बहुत ही कम है। तो एक लड़का या एक लड़की हो हमारे परिवार में तो भी हम, हमारा परिवार और जो कुटुंब है वो समाधानी से हम जी सकते हैं। इन विचारों तक भी बहुत कम लोग हैं जो इन विचारों तक अभी तक जा रहे हैं। आज भी लड़कियों को जितना महत्व देना चाहिए उतना वह नहीं दिया जाता है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है हरीश जी की जनसंख्या वृद्धि होने के ये सभी कारण है।
बराबर है, आपने सही बताया, जैसे भी विज्ञान सीखते हैं विज्ञान को उपयोग भी करते, लेकिन वैज्ञानिक सोच न बढ़ने के कारण लोग अंधविश्वास के चलते ये सब समस्याएं समाज में है। देखिए राष्ट्रीय आप ये भी बताइए जनसंख्या के वृद्धि से होने वाली समस्या कौन सी निर्माण होती है, इस पर प्रकाश श्रोताओं के लिए आप प्लीज बताइए।
हाँ हाँ, जनसंख्या के वृद्धि से तो बहुत सारी समस्या पैदा होती है। लेकिन की देखिए पहले की हमारे परिवार में अगर ज्यादा बच्चे होने के कारण सबको शिक्षा नहीं मिल पाती है, और यह हम लोग रोज हमारे स्कूलों में भी पाठशाला में मैं टीचर हूँ तो हम लोग यह देखते हैं हमारा जो परिवार है वो सुखी समाधानी जीवन में नहीं जी पाता है। अच्छी शिक्षा न होने के कारण हमें अच्छा काम नहीं मिलता है, अच्छा काम नहीं मिलने से कोई भी काम नहीं मिलता है, और फिर बेकारी पैदा हो जाती है, पैसों का अभाव निर्माण हो जाता है, और काम नहीं है तो काम का अभाव भी निर्माण हो जाता है। इसके कारण मुझे कुछ काम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये जो लोग रहते हैं वो व्यसनाधीन बन जाते हैं, व्यसनों के आहारी जाते हैं। और फिर पैसा कैसे लाए, हम सब काम कर सकते हैं, सब नाटक कर सकते हैं, लेकिन पैसे का तो कोई नाटक नहीं कर सकते, तो फिर पैसे के लिए ये लोग चोरी का मार्ग या कोई भी गैर मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, बुरी आदतों के शिकार होते हैं, रहने के लिए जगह नहीं होती है जनसंख्या की वृद्धि होने के, तो इसके कारण झोपड़पट्टियों का निर्माण होता है, और साथ ही साथ में गंदगी की समस्या निर्माण होती है, हमारी जो पानी की समस्या निर्माण होती है, आरोग्य की समस्या का फैलाव बहुत सारा हो जाता है, हमारी जो सार्वजनिक सुविधा होती है कि उन पर का जो भार है वो बढ़ जाता है, और वो सुविधा भी हमें कम गिरने लगती है। हरीश जी
बराबर बराबर, जनसंख्या के उपलक्ष्य में आप बात कर रही हैं, तो आप ये भी श्रोताओं को समझाइए इस दिन का औचित्य पर ध्यान देते हुए जनसंख्या नियंत्रण हमारे हाथ में है, इस पर हम नियंत्रण किस प्रकार से पा सकेंगे, इस पर भी आप प्रकाश डालिए प्लीज।
यस, बहुत अच्छा सवाल है ये हरीश जी। पहले तो देखिए, पहले तो हमारी जो हमें हमारी शिक्षा यानी हमारे एजुकेशन पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जिसे ग्रहण करने के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता है, हम किसी भी उम्र में कोई भी ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। ज्ञान के साथ ही साथ हमें अंधविश्वासों से पहले बाहर निकालना बहुत जरूरी है। हमारी जो संस्कृति है यह पुरुष प्रधान संस्कृति है, आज भी हम देखेंगे तो पुरुषों को 100% आजादी होती है और स्त्री पर 100% बंधन होते हैं। आज भी लड़कियां उच्च शिक्षित है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी है, लेकिन उस इसमें परिवार में उसे कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है, उसका निर्णय कोई जान नहीं लेता है, बच्चे के बारे में भी उसकी राय नहीं जान लेते कि उसे माँ बनना है कि नहीं, उसे अभी बच्चा चाहिए कि नहीं, यह भी जान नहीं लेते हैं। लड़कियों पुरुषों के बराबर का स्थान आज ग्रहण कर रही है, सब बड़े बड़े स्थान पर वो बैठी हुई भी है। लड़कियां चाहिए तो इस मानसिकता में पहले हमें बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि लड़का ही हमें चाहिए ऐसी सोच है बहुत सारे लोगों की, तो उसमें पहले हमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। लैंगिक समस्या पर हमें ध्यान देना जरूरी है, बहुत ही सारा उसमें ध्यान देना चाहिए। देखिए कोई एक दो उदाहरण मैं ऐसे बताना चाहती हूँ कि मध्ययुगीन कालखंड में जैसे रजिया सुल्ताना थी, चांद बीबी थी, इनका कार्य तो सभी को मालूम है। स्वतंत्रोत्तर कालखंड में भी बहुत सारी महिला ने ऐसे काम किया है, जैसे कि इंदिरा गांधी थी, सुनीता विलियम थी, कल्पना चावला है, मलाला यूसुफ है, ग्रेटा थंडर जो है पर्यावरण प्रेमी है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जो आगे कुछ उन्होंने की है, और उनके आगे कुछ में कहीं भी लिंग भेद बीच में नहीं आया है, यह ध्यान में लेना बहुत जरूरी बात है। और इन सभी स्त्री के घड़ने में उनकी खुद की शक्ति तो है, उनका लक्ष्य है, उनका जिद है, उनका पावर भी है, उन्होंने सबका यह उपयोग किया है। इसके साथ ही साथ उनको उनके घर के पिताजी का, उनके पति का भी योगदान मिला है। जब उस टाइम में उनके पति या उनके पिता उनको साथ देते तो अब क्यों नहीं हो सकता है। लड़कियां खुद के बल पे तो करती है, लेकिन अगर घर से उनके साथ मिले तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है जो मुझे बताना बहुत जरूरी लगता है यहाँ पे, गीता और बबीता फोगट जो हमारे भारतीय कुश्तीपटू है जो हरियाणा से, हाँ हरियाणा से है, हर घर में जब दो लड़कियां होती है तो उनको पिताजी को ऐसी चिंता होती है कि उनकी शादी कैसी होगी, मुझे आज के जमाने में कितना दहेज देना पड़ेगा, ऐसी चिंता होती है। लेकिन गीता और बबीता फोगट के पिताजी को चिंता थी कि मेरी बेटी या भारत के लिए कुश्ती में गोल्ड मेडल कैसे ले पाएंगी। ऐसी सोच अगर हर पिताजी को, पिताजी की होगी हरी जी, तो मुझे लगता है इन सभी बातों पर जो अभी मैंने बोली है, हम इसके जनसंख्या के नियंत्रण के बारे में जो बोली है, तो इस पे हम नियंत्रण जरूर ला सकते हैं हरी जी।
बराबर है, क्योंकि देखिए आपने ये भी बताया कि अंधविश्वासों से बाहर आना होगा अपने को। महिला पुरुषों की गुलाम है, मतलब महिलाओं के बंधन में है, महिलाएं बंधन में है। ऐसा ये भी देखा गया कि उच्च शिक्षा लड़कियां होने पर भी निर्णय लेने की क्षमता उनमें होते हुए भी परिवार में उसे कोई महत्व नहीं है, यह भी एक जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आप अभी ये भी हम लोगों को समझाइए थोड़ा सा, जनसंख्या वृद्धि और अंधश्रद्धा इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है, किस प्रकार से देखते आप इसकी ओर?
जरूर जरूर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहले तो बच्चे होना ऐसे माना जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं अंधविश्वास के बारे में से कि बच्चे होना ये भगवान की देन है, यह अपने हाथ में नहीं होता है। लेकिन यह मानना चाहिए, यह पहले ध्यान में लेना है, बच्चे होना यह भगवान की देन नहीं है और यह अपने ही हाथ में है, यह समझना पहले जरूरी है। लड़का ही चाहिए, इस मानसिकता में पहले हमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हमें अच्छा आरोग्य कैसे मिल सकता है, हमारा कुटुंब स्वास्थ्य कैसे टिक पाएगा, इस पर प्रथम ध्यान देना है। और एक या दो बच्चे होने से यह मुमकिन हो सकता है, यह ध्यान में लेना जरूरी है। अगर दोनों लड़कियां होती है तो, अगर किस स्त्री को अगर दो लड़कियां होती है, तीन लड़कियां होती है ना, लड़का की राह देखते देखते, तो पहले यह ध्यान में लेना चाहिए कि वो जो दोष है, लड़कियां होना यह दोष स्त्री का नहीं है, उसमें नहीं होता है। और इसका वैज्ञानिक जो रीजन है वो हमें पता करना है कि जैसे स्त्री के पास दो गुणसूत्र एक्स एक्स, यह दो गुणसूत्र होते हैं, और पुरुष के पास एक्स और वाई, यह दो गुणसूत्र होते हैं। और जब दो एक्स एक्स गुणसूत्र साथ में आते हैं तो लड़की होती है, और एक्स और वाई गुणसूत्र जब एक साथ आएगा तभी लड़का होता है। यह बात हमें जान लेनी चाहिए, क्योंकि लड़का होना यह सर्वस्वी पुरुष पर अवलंबित है, क्योंकि वाय गुणसूत्र उसके पास से ही आने वाला है। और हमेशा यहाँ पे स्त्री को दोषी समझते हैं, तो यह समझना गलत है। यह सब इस पे पहले तो गौर करना जरूरी है। और जो माता पिता है उनका प्रबोधन करना भी बहुत जरूरी है, लड़के की कम उम्र में शादी ना करें। आज देखो, आज कोरोना की स्थिति में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो 18 उम्र से कम है, उनकी शादी की गई है। क्योंकि क्यों की गई है, तो शादी में खर्चा कम आता है, लोग शादी में बहुत, अभी जो लोगों की संख्या है ना, उससे बंधन है कि 25 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए, तो खर्चा कम आता है। इसलिए बहुत सारी ऐसी लड़कियां कि उनके माँ बाप ने उनकी शादी की गई है। हमारे स्कूल में भी ऐसी एक 10वीं की लड़की है कि जिसकी शादी माँ बाप ने की है। हम बहुत सारे उसके ऊपर अभी ये कर रहे हैं कि वो फिर से कैसे शिक्षा के प्रभाव में आ सकती है। विज्ञान के प्रगति से परिवार नियोजन के बहुत सारे साधन है ना, तो इसकी शास्त्रीय जो जानकारी है वो हर युवक और युवती को मिलना बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लैंगिक, हाँ ये इसके ऊपर गौर करना चाहिए। जो लैंगिकता शिक्षण है, वो लैंगिकता शिक्षा का अंतर्भाव हमारे पाठशाला में से ही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, हम लोग ये बच्चों को बहुत जुज्बी, उसका जो शिक्षा है वो बहुत जुज्बी ज्ञान उस स्कूलों में 9वीं और 10वीं के किताब में वो है, लेकिन उसका जो ज्यादा से जो ज्ञान कैसे मिले, तो वो पाठशाला का भी उसका अंतर्भाव होना बहुत जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। हमें विज्ञानवादी बनना चाहिए, लोगों में विवेकवाद निर्माण होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें निर्माण करना चाहिए, तभी हमारी खुद की, हमारे बच्चों की, हमारे कुटुंब की, गांव की और हमारे देश की प्रगति हो सकती है। उसके इस प्रश्न के उत्तर में मैं अंत में चार पंक्तियां भी कहना चाहती हूँ हरीश जी। समृद्ध देश बनाना है, अंधश्रद्धा से हमें छुटकारा पाना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है और देश को आगे बढ़ाना है। हरीश जी
बिल्कुल, भारतीय जी को आपने बताया कि जनसंख्या में नियंत्रण करना है और देश को आगे बढ़ाना है। और लड़की पैदा होती है उसके लिए महिला ये जिम्मेदार नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से आपने एक्स गुणसूत्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की। देखिए भारती जी, भारत जादू जी, जिन्होंने जनसंख्या के अवसर पर मोबाइल वाणी के स्रोतों को जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्र में बिखरे हुए, उन श्रोताओं के लिए बहुत जनसंख्या दिवस के ऊपर मार्गदर्शन किया है और अच्छे महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं मोबाइल वाणी की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में दिनकर जी हैं, जो कि पातुरकर जी, जो कि छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं और हमारे मोबाइल वाणी के वो भी संवाददाता हैं, वे भी आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, वो भी कुछ जानकारी देंगे। दिनकर जी
जरूर जरूर।
नमस्कार दीदी।
नमस्ते नमस्ते सर।
जैसा कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और आपने इस दिन पर बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मोबाइल वाणी के श्रोताओं को दी है, देखने में आते हैं कि अधिकतर लोग यह कहते हैं कि बच्चा होना नसीब का खेल है या तो भगवान की देन है। कहीं ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा देखने में आता है। और एक बात विशेष करके देखने में आती है कि महिला ही महिला को प्रताड़ित करती है, यदि बच्चा ना हुआ या लड़कियां ही लड़कियां हुई, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगी?
जरूर, बहुत अच्छा सवाल है सर जी। तो मैं इसके बारे में ऐसा कहना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे हमारे संत तुकाराम जी है, हमारी जो संतों की परंपरा है, तो उन्होंने कहा है कि नवसे पुत्र होते तरी क्या करावा लागे पति, है ना। तो कि देखिए कि कौन सा
बच्चा पैदा होते पति करने की क्या आवश्यकता है।
हाँ, जर ऐसे ही बच्चे होते हैं तो क्यों पति की जरूरत है, है ना। तो ऐसे नहीं है, कौन सा भी देखो कि जब हमारा जो समाज में है ना, जो स्त्री का जो स्थान होता है वो बहुतांशों पर पुरुषों पर निर्भर किया जाता है। एक ऐसे लोगों में सोच है और वो ऐसे करते हैं, पुरुषों पर निर्भर किया जाता है कि उसकी शादी हुई है क्या, उसके गले में मंगलसूत्र है क्या, उसका आदमी कैसा है, अगर उसे लड़का है क्या, लड़का है तो वो कैसा है, यानी उस स्त्री का जो स्थान है वो लड़का या उसके आदमी के स्थान पर उसे तौला जाता है और ये रूढ़ी परंपरा के अनुसार वो होता है, बराबर ना। तो क्या होता है इससे कि हम जन्म से देखे, कौन सी भी स्त्री जो होती है वो जन्म से कौन सी भी अवस्था लेके पैदा नहीं होती है। समाज को वो स्त्री कैसी चाहिए, पुरुषों को स्त्री कैसी चाहिए, हर घर में स्त्री कैसी चाहिए, उस तरह से उसके ऊपर संस्कार किए जाते हैं। और हमेशा पुरुष जो होते हैं कि पुरुषों को एक आदमी की तरह देखा जाता है, लेकिन स्त्री को ऐसे नहीं देखा जाता है, स्त्री को ऐसे नहीं समझा जाता है, उसे क्या समझते हैं कि वो सिर्फ किसी के लिए तो उपलब्ध है। ऐसे ही इन सभी कारणों से क्या होता है, स्त्री के विचारों से, इन सभी के विचारों से वो अंधश्रद्धा में डूबते आगे आगे जाती है, अंधश्रद्धा में, बराबर ना। तो और जो बुआ बाबा, उसे अगर बच्चा नहीं होता है या पहले लड़कियां है, तो देखो घर से ये जो घर में जो स्त्री होती है, जैसे कि सास रह होती होगी, अगर ननंद होती होगी, तो स्त्री का ही बहुत सारा हाथ होता है कि उसे बहुत तकलीफ दी जाती है। लेकिन स्त्री ने यह जानना जरूरी है कि मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए और होता है। यह मंगलसूत्र या आदमी या मेरा लड़का, ये कोई स्थान नहीं है, या कोई बुआ बाबा के पास जाके मुझे कोई लड़का या वगैरह कोई होने वाला नहीं है, है ना। वो आदमी होना या लड़का होना ये मेरे जीवन का एक भाग है, है ना। वो मेरा पूरा जीवन नहीं है कि यह एक हर एक स्त्री जब समझ लेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्त्री को बच्चे नहीं है या किसी का आदमी नहीं है या किसी स्त्री ने शादी नहीं की है, इस स्त्री को अन्य स्त्री से यानी अन्य समाज से कोई भी तकलीफ नहीं होगी और स्त्री एक मुक्त संचार करते हुए जी सकती है। और जो दूसरे अपने सवाल पूछा था कि वो बुआ बाबा के पास जाती है ना, तो वो जैसे संत तुकाराम ने कहा कि बुआ बाबा के पास जाके कोई होने वाला नहीं है, हम वो बुआ बाबा के पास जब महिलाएं ज्यादातर जाती है वो घर से होने वाली तकलीफ के वजह से जाती है। बच्चे होना ये कोई भगवान की देन नहीं है, नसीब का भी खेल नहीं, ये भी पहले ध्यान रखना चाहिए।
शोषण करते हैं उनके जो समझ है, उस समझ को समझ कर वो लोग शोषण करते हैं, क्योंकि वो पाखंडी और ढोंगे होते हैं और वो गुमराह करते हैं।
हाँ, गुमराह करते हैं और हम स्त्रियों को बहुत फंसाते हैं उसमें। लेकिन यह स्त्री ने और पुरुषों ने भी, घर के हर एक आदमी ने यह ध्यान रखना चाहिए कि यह बच्चा होना ये खुद अपने हाथ में ही है। जैसे मैंने अभी गुणसूत्र के बारे में हरि जी ने जब प्रश्न पूछा था तभी बताया था, तो यह ध्यान लेना मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है।
और अभी तो लड़का हो या लड़की दोनों समान है, लड़कियां भी काफी तरक्की कर चुकी है और डॉक्टर बनती है, बड़े बड़े पायलट बनती है और कहाँ कहाँ नहीं है, बस चलाती है, रेलवे चलाती है, विमान भी, यानी हर क्षेत्र में महिला, मिलिट्री में महिलाएं दिखेंगी। यानी ये जो असमानता थी वो छूट गई है और ये समानता है कि लड़कियां भी आगे बढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है।
हाँ, वो लैंगिक समानता पर ध्यान देना मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, तो यह सवाल ही नहीं पैदा हो सकते हैं, है ना।
बहुत अच्छी बात है, आपने चुनवारा मोबाइल वाणी पर संयुक्त रूप से उपस्थित होकर आज विश्व जनसंख्या दिवस पर आपने अपनी महत्वपूर्ण बातें साझा की, इसके लिए छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से जिला समन्वयक दिनकर पाटुकर,
धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार।